ओम शांति। मेडिटेशन के लिए कई सारे टूल्स हैं और आज हम जिस प्रैक्टिकल मेडिटेशन की बात करेंगे उसका जो शुरुआत है मेडिटेशन से बेहतर कुछ और हो नहीं सकता। तो आप सभी मेरे प्यारे प्यारे भाइयों और बहनों को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हम एक गीत के माध्यम से परमात्मा से अपने मन और बुद्धि की तार जोड़ें और कोशिश करें कि जो तार है जुड़ी रहे। ठीक है, तो जितना हम महसूस करेंगे तो ये जो गीत है ये मेरे 23 साल के सफर की में जो अनुभव है महसूसता है वो आपसे मैं शेयर कर रहा हूँ। तो हम उसी रीति बस मन और बुद्धि परमात्मा से जुड़े। ओम शांति।
पल पल हुए सुहाने प्रभु याद में तुम्हारे, पल पल हुए सुहाने प्रभु याद में तुम्हारे, आनंद के एहसास से
ओम शांति। मेडिटेशन, मेडिटेशन के बारे में हमने बहुत बहुत सुना है ना। मेडिटेशन क्या होता है उसके बारे में भी जाना। मैं आज आपको एक बहुत सिंपल चीज बताने वाला हूं, ठीक है। मेडिटेशन आप जानते कब से करते आ रहे हैं? मैं आपको एक वो पुरानी एक कहावत है, या बोलो शायरी जैसे बोलते ना, दो लाइन है, बोलते हैं जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे, और जहां ना पहुंचे कवि, अरे नहीं, कहते हैं जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, और जहां ना पहुंचे कवि वहां पहुंचे अनुभवी, जिसने अनुभव किया है। और मैं आपको याद दिलाऊंगा आपने अनुभव किया है। देखिए, हम जब इस दुनिया में आते हैं छोटे बच्चे के रूप में, बहुत प्यारे नन्हे मुन्ने, याद करिए अपना स्वरूप, कैसे थे आप? 4 महीना, 6 महीना, 8 महीना चलना सीख लिया घुटने पे, और फिर 1.5 साल, बीच बीच में कभी कभी मम्मी पापा गुस्सा भी होने लगे, पहले नहीं होते थे, पहले तो जिगर का टुकड़ा मेरा लाल, बाद में धीरे धीरे। हाँ, अब आप देखो बचपन में जब बच्चा इतना छोटा सा होता है, मम्मी नहीं बताती बेटा मैं सुशीला हूँ, मैं कमला हूँ, हाँ शांति हूँ, ऐसा नाम नहीं बताती अपना, माँ बेटा कनेक्ट, ठीक है। बच्चा जानता है ये मेरी माँ है, माँ जानती है मेरा बेटा है, मेरा बेटी है, ठीक है, और वो कनेक्ट है। और कुछ भी चाहिए बच्चे को वो एक ही भाषा बोलता है, वाह वाह रोता है, ठीक है, और माँ आती है दौड़ी दौड़ी आती है, ठीक है। तो देखिए बच्चे को क्या सीखना पड़ा, कनेक्शन कैसे लगाना है, ऑटोमेटिक है, क्योंकि सबसे बड़ी चीज जो कनेक्शन में वो है संबंध। अगर संबंध है तो कनेक्शन है। क्या हमारा संबंध भगवान से नहीं है? है, और सबसे स्ट्रांग, स्ट्रांगेस्ट, ठीक है ना। तो भगवान से हम सबका संबंध है, एक दो का नहीं, जन्म का नहीं, जन्म जन्मांतर का, कल्प कल्पांतर का। तो ये सबसे स्ट्रांगेस्ट, मोस्ट पावरफुल कनेक्ट है, और ये सबसे सहज है, इसलिए इसे कहते हैं सहज याद, योग, मेडिटेशन। अब हमने क्या किया इस दुनिया में, सुन लिया, बहुत पढ़ लिया, बने बड़े बड़े लोग सिखाने आए, लेकिन क्या होता है, सिखा कौन रहे हैं आज इस दुनिया में? देहधारी। मेडिटेशन का अर्थ सिखा रहे, मेडिटेशन करना सिखा रहे, तो वो देह के बारे में सब सिखा देते हैं। फूंक मारो, हाँ तो सेहत अच्छी होगी, फेफड़े अच्छे होंगे, कोई प्रॉब्लम है ठीक हो जाएगी, लेकिन शरीर की ठीक होगी, मन की नहीं होगी, क्योंकि मन को शक्ति देने वाला वो एक ही, हाँ, हम सबका परमात्मा है, ठीक है ना। क्योंकि जो जैसा है वो उसी तरह से ही शक्ति दे सकता है, और उसी तरह की चीज को शक्ति देता है, ठीक है ना। आप देखो दो तार जोड़ते हैं तो आपस में पहले वायर निकाल के ऊपर से निकालना पड़ता है, ठीक है। आज तक मैं अपने को देह समझ रहा था, तो कनेक्शन क्या हो रहा था? हो रहा था? नहीं हो रहा था। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे गिरजाघर कहां कहां नहीं जाते, मजार बाजार भी जाते कभी कभी, इधर उधर कनेक्शन हो जाए, नहीं होता, ठीक है। लेकिन जब ज्ञान मुझे मिलता है कि मैं इस शरीर को चलाने वाली एक चैतन्य शक्ति आत्मा हूं, तो मेरा पिता परमात्मा, वो भी एक चैतन्य शक्ति, ठीक है। शक्ति का शक्ति से कनेक्शन हो सकता है, सिर्फ मुझे ये भूलना है कि मैं ये शरीर नहीं हूं, ये जो ऊपर का आवरण है ये मैं नहीं हूं, मैं चैतन्य ज्योति बिंदु स्वरूप, वंडरफुल स्टार। दुनिया में बॉलीवुड में लोग अपने को स्टार समझते हैं, वो झूठे हैं, आप सच्चे हैं, एक एक आत्मा, आप सभी एक एक बहुत वंडरफुल स्टार है। सिर्फ मुझे अपने आप को पहचानना है। आप देखो हम सब लोग दिन में, आजकल किसका जमाना है, किस चीज का, आपको मालूम है इस पूरे प्रांगण में सबसे ज्यादा सेल्फी कौन लेता है? आपने मुझे देखा सेल्फी लेते हुए? सबसे ज्यादा मैं लेता हूं, और भी होंगे मेरे जैसे कई भाई कई बहनें जो रोज कितनी सेल्फी लेते हैं, देखा आपने? देखा, हाँ देखा। हमें मेडिटेशन में एक ही चीज यहां पर हमारी बहनों ने सिखाया, मतलब सिखाने वाले परमात्मा पिता, लेकिन माध्यम हमारी बहनें, उन्होंने एक ही चीज सिखाई, भाई अपने को देखो। और इसमें दो चीजें हैं, बताएंगे कोई? दो चीजें कौन सी हैं? अपने को देखो, पहला अपने को देखो और दूसरा अपने को देखो। अपने को देखो और अपने को देखो, अपने ही तो है ना। ये चीज अगर आपने समझ ली, और तीसरी चीज कोई है ही नहीं इस दुनिया में। मेरा कौन, मैं कौन, मैं कौन, मेरा कौन, और कोई चीज नहीं है। और यही सबसे बड़ा संबंध है, कनेक्ट है, क्योंकि देह से मेरे सब हैं, मेरे सब, मेरी वाइफ, मेरे माता पिता, मेरे भाई बहन, मेरे आप भाई बहन सभी हैं। लेकिन ये जन्म जन्मांतर का नहीं है, क्योंकि पिछले जन्म में कौन कौन थे मेरे को याद नहीं, अगले जन्म में कौन कौन होंगे। लेकिन हर बार कल्प कल्पांतर, मतलब एवरी 5000 ईयर्स, जो हमेशा मेरे साथ था, भले ही मैं स्मृति में, मेरी स्मृति में था या नहीं था, लेकिन इस समय में, मतलब पुरुषोत्तम संगम युग में आकर परमात्मा मुझे याद दिलाता है, बच्चे मैं वही तेरा पिता हूं जिसने हर बार इस चक्र में अंत में आकर तुझे स्मृति दिलाई। देखिए हनुमान को भी याद दिलाया गया था ना, हाँ, बोलते हैं कि उसने सूरज खा लिया था, क्या? अब बताओ सूरज को कैसे कोई खा सकता है? असली में बात है हमारा ज्ञान सूर्य बाबा, उसका ज्ञान सुनाना मुख से, ठीक है, बच्चा सुनाएगा अपने बाप के बारे में, बखान करेगा, तो हनुमान, हनुमान का अर्थ जानते हैं? हमारी बहनों ने बहुत अच्छा बताया है, टचिंग परमात्मा की है, बताते हैं हनुमान वो जो अनुमान और अभिमान का हनन कर देता है, ना कभी अनुमान लगाता है ये क्या कर रहे हैं, ये क्या सोच रहे हैं मेरे बारे में, वो क्यों नहीं ऐसा करते, वो ऐसा, टाइम वेस्ट नहीं करना। हनुमान मतलब मैं और मेरा प्रभु, और कहां पर? मेरे हृदय में, हाँ ऐसे दिखाए ना फोटो, हाँ वहां फोटो क्यों रखाई? क्योंकि परमात्मा का अगर स्टार दिखाते तो शायद उस समय नहीं समझते, आज हम बच्चे समझ रहे हैं परमात्मा ज्योति बिंदु स्वरूप। तो आज अगर आप हनुमान की तस्वीर देखो तो जब ऐसे देखें तो यहां देखना एक ज्योति बिंदु स्वरूप शिव बाबा बैठा हुआ, उसके भी शिव भक्त, ठीक है। राम मतलब परमात्मा राम, हम सबका पिता। अब आए हम प्रैक्टिकल में, ये तो था थ्योरी, ठीक है ना। हम लोग बहुत थ्योरी पढ़ते हैं और प्रैक्टिकल को क्या करते हैं, प्रैक्टिकल कल कर लेंगे, आज नहीं। आज जो मेरे साथ परिस्थिति हो रही है वो मैं तो, अब क्या करें, ऐसा सबके बीच में करना ही पड़ता है, सुनते थोड़े ही हैं, जो सीनियर हैं वो तो ऐसे ही हैं, वो हमेशा ऐसे ही करेंगे, है ना। हम लोग ऐसा सोचते हैं अक्सर करके। आप लोग भी शायद जब इस कोर्स में शुरू में आए थे, कितने लोगों ने सोचा होगा कि ये ऐसी बातें करते हैं, बहुत अच्छा है, सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन प्रैक्टिकली क्या हम कर पाएंगे? कि आपका अधिकारी आपको कुछ बोल रहा है और आप मुस्कुराते रहो, ऐसा होगा? हमारे डॉक्टर श्रीमंत भाई ने कितना अच्छा लेक्चर लिया, तो क्या अगर मान लीजिए कोई अधिकारी मेरा सीनियर मुझे गाली दे रहा और मैं उससे बोलूंगा, करेंगे? करेंगे? लेक्चर बहुत वंडरफुल था, लेकिन उसकी प्रैक्टिकलिटी में मेरे को समझना है कि उस समय मैं करूंगा क्या, क्योंकि स्थूल रूप में मैं ये सब नहीं कर सकता। बोलेगा भाई इसको तो फॉर्म 10 भरो, इसको जमा करो है कि नहीं, ये अभी ऐसा क्यों कर रहा है? नहीं कर सकते वहां। करेंगे आप? नहीं। फिर वहां क्या करेंगे? हाँ, दूसरा स्थूल रूप में जैसे हमने यहां देखा, क्या वहां आप ऐसे करेंगे? सीनियर डांट रहा है और आप ये भी नहीं कर सकते, फिर हम क्या करेंगे? फिर मैं करूं क्या? यहां तो सीखा बहुत ज्ञान, वहां जाके मैं ऐसे करने लगा तो बोले भाई फॉर्म 10 लेके जाओ, इसको जमा करो जरा मिलिट्री हॉस्पिटल में या नेवल हॉस्पिटल में या पुलिस का, जो भी जहां भी आप लोग का होता है, तो हम क्या करेंगे? तो वो प्रैक्टिकलिटी आती है, ठीक है ना। तो वो है, आपको मैं अपना अनुभव बताना चाहूंगा। मैं जब छोटा था 11th क्लास में, मैं बहुत ही मीडियोकर स्टूडेंट था, पूरे साल पढ़ता नहीं था, एग्जाम आता था तो खूब गियर लगा देता था, और कभी कभी गियर इतना लगाता था कि ओवरड्राइव पे गाड़ी चली जाती थी, मतलब आउट ऑफ कंट्रोल, ठीक है। मैं बिल्कुल, मतलब माँ बाप तो हमेशा कहते हैं पढ़ो 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 पढ़ो, टीचर भी कहते हैं पढ़ो, लेकिन मैं एवरेज स्टूडेंट, सिर्फ एग्जाम के टाइम में गियर लगा के पढ़ने वाला। अभी हम सब कौन से दोराहे पे खड़े हैं, जब भगवान कह रहा है पढ़ो पढ़ो पढ़ो, अपने पे पुरुषार्थ करो, अब समय आ गया है इम्तिहान का सबका, और बच्चे बूढ़े समान हम सबका इम्तिहान है। अभी ये नहीं कह सकते अभी मेरी उम्र थोड़ी सी, अभी मैं तो यंग हूं, अब सबका इम्तिहान है, एक छोटा सा बच्चा और एक वृद्ध। तो फिर मुझे क्या करना है, प्रैक्टिकली जो मैंने सीखा उसको प्रैक्टिस में लाना है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, करत करत अभ्यास के जड़मति हो सुजान। ठीक है ना, तो देखिए ये प्रैक्टिकल मैं कैसे करूंगा, जब मैं कुछ अनुभवों को रोज अनुभव करूंगा और कुछ ना कुछ अपना अनुभव का खजाना जमा करूंगा। बाबा ने हमें एक बहुत अच्छी चीज सिखाई है कि रोज रात को मुझे पोता मेल दो, मतलब मुझे सुनाओ। जैसे हम घर में भी करते हैं, जाके बच्चा छोटा होता है, देखो हम सब करते थे, जाके मम्मी आज स्कूल में ना ये 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 हुआ, पापा आज ये ऐसा 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 हुआ, सब सुनाते हैं। तो अब हमें तो असली मिल गया है ना, जो हमारा जन्म जन्मांतर का पिता है उसको सुनाओ। तो जैसे यहाँ पे बाबा का मेडिटेशन रूम है, हम सभी बच्चे भी क्या करते हैं, हम सबके घर में आएंगे ना, आप देखेंगे एक बाबा का कमरा होगा घर में, और वहां पर हम सब सुनाते हैं। कोई प्रॉब्लम होती है, कोई ऐसी बात होती है जो मैं शायद अपने हाँ वाइफ को नहीं बता सकता, लेकिन बाबा को तो बता सकता हूँ सारी बातें, तो वहां मैं बता सकता हूँ। कोई बात है जो मेरा बेटा शायद ना समझे, लेकिन बाबा तो समझ सकता है, तो बाबा को मैं समझा देता हूँ, बाबा उसको समझा देता है इनडायरेक्टली, है कि नहीं? क्योंकि आज का समय आप देखो, कई बार माता पिता सोचते हैं बच्चे, ये जेनरेशन गैप, बच्चे समझते हैं ये क्या बात करते हैं, दकियानुसी बातें या इस टाइप से, तो ये सारी चीजें मेडिटेशन बहुत आसानी से गैप पूरा कर देता है। तो जब रात को आप करेंगे तो आप देखोगे आप धीरे धीरे अपने अनुभवों को संजो के बहुत पावरफुल बन सकते हैं, और आपके जो अनुभवों का खजाना है ये आपको जो आने वाले समय में जो बहुत डिफिकल्ट अनुभव होंगे उसमें आपको बहुत हल्का बना देगा। आपको मैं एक छोटा सा अनुभव सुनाता हूं। मैं बचपन से जो चीज ऑब्जर्व करता था वो ये ऑब्जर्व करता था कि जब मैं छोटा था तो माँ बाप ने कोई गलती की तो माँ बाप ने क्या किया, हमें पनिशमेंट दी, डांटा चिल्लाया। जब हम स्कूल में पहुंचे टीचर्स ने भी हमारे साथ वही किया, गलती की। ट्रेनिंग के दौरान पहुंचे तो हमारे साथ हमारे उस्तादों ने, हमारे सीनियर सुपीरियर ने यही किया। अब हम बन गए, अब हमने यूनिफॉर्म पहन ली, घर में भी यूनिफॉर्म पहनी है, यहां माताएं बहने हैं वो भी किसी ना किसी रूप में घर में एक तरह से संभाल रहे हैं, लीडर हैं, तो उन्होंने भी एक औधा एक पोस्ट संभाली है। तो अब हम वहां पे कोई गलती होती हम भी वैसे ही इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब वैसे ही चल रहे हैं, जो सीखा उसी हिसाब से सेम मॉडल पे चल रहे हैं। तो मैं भी ऐसे ही चलता था, और ऐसा करने के दौरान मेरे को ये अनुभव हुआ कि मेरा अपना लाइफ बहुत डिस्टर्ब्ड हो गया, मैं खुद अशांत रहने लगा, क्योंकि मेरा कोई सबॉर्डिनेट गलती करता था, मैं जैसा ट्रेनिंग में सीखा है, जैसा फिर फौज में आके सीखा है एज अ यंग लेफ्टिनेंट, वही हम करते थे, उसी हिसाब से डील करते थे। लेकिन देखा क्या कि उससे कोई सुधर नहीं रहा है, सुधरना होता तो शायद हम बचपन में ही सुधर गए होते, बल्कि और ही बढ़ता जा रहा है इनडिसिप्लिन, और बढ़ता जा रहा है। हम बोलते हैं आजकल लोग समझते नहीं है, ये आजकल की नई वाली फौज, बिलीव यू मी नई वाली फौज बहुत अच्छी है, मुझसे ज्यादा बेटर इन्फॉर्म्ड है, तो मेरे को कोई शिकायत नहीं है। जो आज के हमारे नए जनरेशन के लोग हैं दे आर वंडरफुल, लेकिन ये शायद मेरी सोच है जो मैं ऐसा बार बार सोच रहा हूं, क्योंकि मेरी सोच थोड़ी सी पुरानी है, उसको मेरे को अपडेट करना है, क्योंकि वो हमारे भाई बहुत वंडरफुल है एक से एक। क्योंकि मैं बचपन में सोच भी नहीं सकता था, मैं जब मैं फर्स्ट डिवीजन में पास होता था, ट्वेल्थ में पास हुआ था, तो हमारे टाइम में मोबाइल नहीं था, हमारे टाइम में इतने सारा ये जो आकर्षण है वो नहीं था, तो उस समय हम लोग बहुत आसानी से फर्स्ट डिवीजन ले आए। आज के समय बच्चे देखिए इतना सब आकर्षण है और इतना जबरदस्त आकर्षण है, क्योंकि हाथ में मोबाइल में सब कुछ है और हर तरह का है, नेगेटिव पॉजिटिव डेडली नेगेटिव, लेकिन फिर भी आज हमारे बच्चे कर तो अच्छा ही रहे हैं ना। तो देखिए हम उनको नहीं बोल सकते कि वो कमजोर है या किसी, वो बहुत काबिल है, सिर्फ हमें उन्हें एक दिशा देनी है, और भगवान कहते हैं कि अगर आप दिशा बदल दो तो दशा बदल जाएगी, और कुछ नहीं करना है। और दिशा कहां से बदलेगी, कहां से बदलेगी, कोई बताएंगे, किसकी सोच? बस हाँ बस एकदम एकदम, आप लोग ने बहुत अच्छे से इस चीज को समझाया, वेरी नाइस। मेरे को खुद को ही बदलना और किसी को नहीं, मैं बदल गया तो भगवान बोलते हम बदलेंगे जग बदलेगा, हम सुधरेंगे जग सुधरेगा। तो मैं बहुत डिस्टर्ब रहता था, और कभी कभी घर जाता था तो वाइफ से भी कुछ ऊपर नीचे बातचीत हो जाती थी, तो फिर मैं भी कुछ बोल देता था, फिर ऐसा डिस्टर्बेंस का माहौल हो जाता था। 99 कारगिल युद्ध की शुरुआत और मेरी पोस्टिंग बॉम्बे में हुई, और वन फाइन डे मेरे ऑफिस में दो बहनें आईं, ऐसे ही हमारी बहनों के जैसे, व्हाइट सारीज, और बोलती हैं भाई ओम शांति। मैंने बोला ओम शांति, आप लोग यहाँ क्यों आए हैं? तो बहनों ने एक बहुत अच्छी बात बोली, कि हम अपने फौजी भाइयों को राखी बांधना चाहते हैं, क्योंकि राखी का समय था। तो मैंने बोला क्यों राखी बांधना चाहते हैं, क्योंकि हमने ट्रेनिंग में पढ़ा था कि दुश्मन हर तरह के तरीके इस्तेमाल करता है लड़ाई के दौरान। बहनें भी आ गई, हाँ हम लोग तो ऐसे ही सोचते थे, हमारा दिमाग शक पे ही जाता था। तो बहनों ने एक और बहुत अच्छी बात बताई, बोला कि हम बहनें कारगिल नहीं जा सकती, वहां तो युद्ध चल रहा है, लेकिन हमारा विश्वास है हम यहां अपने फौजी भाइयों के कलाई में राखी बांधेंगी तो वहां हमारी कारगिल में दिल की दुआ पहुंचेगी। मैंने बोला प्लीज बैठ जाओ, मुझे सिखाओ ये कैसे होता है। और तब बहनों ने छोटा सा मेरे को राजयोग मेडिटेशन के बारे में बताया और बोला आप भी सीख सकते हैं, बहुत आसान है। उसी दिन शाम को मैं ट्रैक सूट पहना, क्योंकि योगा सीखना था, ट्रैक सूट पहना और सेंटर पहुंच गया, सोच के कि ये रामदेव बाबा टाइप का कुछ योगा होगा, फूंक फूंक मारनी पड़ेगी, कुछ ऊपर नीचे करना पड़ेगा। लेकिन वहां गया तो बहन थी, एक छोटी सी बहन थी हमारी दीदी के जैसे, और बोलती है विकास भाई बैठ जाओ, और एक गीत लगा दिया, बोला भगवान को याद करो। अब मैं जैसा आज तक याद करता था उस समय, ठीक है ना, और भगवान एक एक मतलब इंसान जो हिंदू है उसको बोलो भगवान को याद करो तो 33 करोड़ तो फोटो देख किसको याद करो। हाँ तो बैठे रहे बैठे रहे बैठे रहे। तब उस दिन फिर जब गीत समाप्त हुआ और परिचय मिला स्वयं का, एकदम से स्मृति आ गई कि मैं कौन, एकदम से इतना पावरफुल फील हुआ। और मेरी जो टीचर थी मुंबई की बहन निजा बहन ने बोला कि विकास भाई भगवान कहते हैं आप प्रसन्नचित रहो, प्रश्नचित मत रहो, तो जो भी प्रश्न आप अपने समाप्त करके जाना ऐसे मत जाना। और मैं आपको बताना चाहूंगा 20 साल एक भी प्रश्न नहीं। आप सोचिए ये नॉलेज जो है ये किसकी है, अरे स्वयं भगवान कह रहा है। आज मैं ये 200-300 रुपए की घड़ी पे विश्वास करता हूं, ये सही टाइम दिखाती है, साइंस कहता है। मैं भगवान की बात पे मेरे को कोई संशय, सॉरी नो, मेरे को एकदम क्लियर हो गया कि इट इज हिज वॉइस एंड फॉर द चाइल्ड। बाप अपने बेटे को क्या कहना चाहता है, माध्यम मेरी बहन का बनाया है। और उस दिन से मैंने कोई सवाल नहीं किया। हाँ कुछ सवाल थे जो हमारे पुरुषार्थ में आते हैं, जो आगे प्रोग्रेस में आते हैं, उसका बहुत अच्छा तरीका बताया, बाबा की याद में बैठो, बाबा से पूछो, डायरेक्ट टीचर जो पढ़ा रहा है वो आपको बताएगा ना, गाइड करेगा। फिर भी अगर कोई है तो फिर हमारी बहनें निमित हमें एकदम क्लियर बता देंगी कहां हम गलती कर रहे हैं, कहां हम इधर उधर कमजोर पड़ रहे हैं। तो ये मतलब मेरा फर्स्ट अनुभव था कि मैं, लेकिन आपको बताऊं इससे पहले एक अनुभव हो गया था मेरा, एक अनुभव कि भगवान मदद कैसे करता है। ठीक है मैं बहुत शॉर्ट में बताऊंगा आपको, क्योंकि वो मेरा मदद ऐसा था, मैं बचपन से भगवान को मानता था, क्योंकि पढ़ाई में कमजोर था ना, तो एग्जाम्स के टाइम में बहुत पढ़ाई भगवान को याद करता था, हाँ स्पेशली मैथ्स का पेपर के बाद याद करता था, हे प्रभु पास करवा देना, फेल नहीं होना मेरे को, क्योंकि मैथ्स में बहुत वीक था, 10th में 33 आए थे, उसके बाद छोड़ दी थी मैथ्स। और मुझे बचपन से सपना क्या था जानते हैं, मैथ्स में वीक और सपना था ऑफिसर बनना है। तो 12th के बाद मैंने एनडी दिया, 4 बार दिया, नहीं हुआ, तो मैंने सोचा शायद मेरी किस्मत में नहीं है, रिटर्न एग्जाम ही क्लियर नहीं कर पाए, ठीक है कोई बात नहीं, बीएससी कर ली, बीएससी करने लगे, लास्ट ईयर बीएससी के मैंने बोला चलो सीडीएस एग्जाम, थोड़ा सा दिल में तो तमन्ना रहती है ऑफिसर बन जाए, तो मैंने एग्जाम दिया बीएससी में, बॉटनी जुअलॉजी केमिस्ट्री ये सब ठीक था मेरा, बहुत अच्छा है, मेरे को इंटरेस्ट लगता सब्जेक्ट्स में, इंग्लिश ठीक है। तो मैंने 2 बार दिया सीडीएस का पेपर, सिर्फ ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी का जो रिटन पेपर होता है वो क्लियर होता था, जो कि सिर्फ इंग्लिश और साइंस मतलब जनरल नॉलेज के बेस पे होता है। तो मैं 2 बार क्लियर किया, लेकिन मेरा एसएसबी में नहीं हुआ, मेरे को रिजेक्ट कर दिया। जब 2 बार रिजेक्ट किया, हताश निराश, मैंने बोला शायद मैं फिट नहीं हूं, मुझ में कुछ कमी है, मैं आर्मी के लिए शायद नहीं बना हूं, चलो कुछ और ट्राई करते। लेकिन फिर भी दिल में एक उम्मीद थी, उम्मीद नहीं छोड़ी। तो मैंने क्या किया, तब तक मैं 24 साल का हो गया था, लास्ट हमारा डेट होता है अगर परमानेंट कमीशन ऑफिसर बनना है 24.5 साल इंडियन मिलिट्री एकेडमी ज्वाइन करनी है। तो मैंने फॉर्म भरा और मुंबई चला गया, और सोच के गया था रास्ते में ट्रेन में, सोचा कि जो फर्स्ट जॉब मिलेगा वो मैं पकड़ लूंगा और मैं काम शुरू कर दूंगा, आगे हो जाएगा जो होगा आगे आएगा। मैं भूल भी गया इस दौरान, मैं मुंबई गया पहुंचा, पहले दिन जो जॉब मिला मैंने शुरू कर दिया, और काम करते करते 3 महीने गुजर गए, एक दिन अचानक से एडमिट कार्ड आ गया कि भाई एग्जाम है सीडीएस कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज लास्ट अटेम्प्ट। तो मैंने बोला चले चले जाते हैं, क्या फर्क पड़ता है, होगा क्या, नहीं होगा इस बार भी, ठीक चले गए। अब एग्जाम दिया इंग्लिश और जीके तो बहुत अच्छा हुआ हर बार की तरह जैसा होता था। अब आया मेरा दोस्त गणित का पेपर, मैंने पेपर खोला देखा, आपको बताऊंगा मेरे को एक भी सवाल 100 में से नहीं बन रहा था, एक भी नहीं बन रहा था। तो मैंने पेंसिल से करते ना ओएमआर शीट में, तो मैंने पेंसिल डाउन रख दी, बैठ गया शांति से। लेकिन आपको बताऊं वंडरफुल चीज क्या थी, मेरे को बिल्कुल डर नहीं लग रहा था क्योंकि मेरा लॉस तो कुछ था ही नहीं। मैं पहले से एक जॉब कर रहा था बहुत छोटी सी, लेकिन कोई चिंता की बात नहीं थी, मैं आराम से बैठा टाइम पास कर रहा था। तभी मन में एक विचार आया, सारे 100 के 100 सवाल कर दो। मैंने बोला कैसे? बोला फर्स्ट 1 से 10 आंसर ए। मैंने फटाफट पेंसिल उठाई, ए ए ए ए ए। मैंने बोला फिर? बोलता है 11 से 20 आंसर बी। मैंने बी 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 बी। मैंने बोला नेक्स्ट 21 से 30 आंसर सी। मैंने सी 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 सी। नेक्स्ट 31 से 40 आंसर डी। 40 सवाल हो गए 5 मिनट में और मेरा कॉन्फिडेंस आ गया, मैं थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ गया। तो मैं फिर बोला नेक्स्ट रिपीट, मन में आया रिपीट ए बी 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 सी 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 डी डी डी। 180 सवाल हो गए, 20 सवाल बचे। मैंने बोला नेक्स्ट, एक डिफरेंट जवाब आया। पिछले दो पेपर में सी और डी आंसर ज्यादा थे, इंग्लिश और जीके में सी और डी आंसर ज्यादा थे ऑप्शंस में। तो 81 से 90 सी, तो मैंने सी सी सी। 91 से 100 आंसर डी 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 डी। 15-20 मिनट में मैंने पेपर कंप्लीट कर दिया, 10 लाइन थी ए बी बी बी। और मैंने बोला सर सर हो गया सर। बोला हो गया? हाँ सर हो गया। और पेपर दिया एग्जामिनेशन हॉल से बाहर। ऐसी गलती कभी नहीं करना कभी, प्लीज आप लोग से हाथ जोड़ के बोलूंगा जीवन में, मतलब आप तो नहीं, आप तो सब सर्विसेज में हो, बच्चे अपनों को कभी ऐसा गलत गाइड मत करना। मैं भी आप लोगों को गलत दिखाना नहीं चाहता हूं, गाइड नहीं करना चाहता, लेकिन आज आपके सामने मैं बैठा हूं, ठीक है। रिटन एग्जाम क्लियर हुआ, मेरे को पता नहीं इतना ज्यादा जोश कहां से आ गया। एसएसबी के लिए प्रिपेयर ही नहीं किया, एक किताब तक नहीं पढ़ी, बिना प्रिपरेशन के लिए एसएसबी गया। और आखिरी दिन चौथे दिन एसएसबी बोलता है नंबर चेस्ट नंबर 29 सेलेक्टेड। मैंने बोला थैंक यू। एंड फर्स्ट टाइम मैं उस दिन दिल से भगवान के लिए रोया कि आपने मुझे क्यों चुना मैं नहीं जानता, लेकिन आपने जो मेरी मदद की है मैं सब कुछ करूंगा आपके लिए, जो आप बोलोगे करूंगा। उस समय शायद मैंने ये वायदा कर दिया, और बोलते हैं वायदे में कुछ ना कुछ फायदा हो जाता है ना। यहां बोलते हैं हमारी बहनें कायदे में फायदा, मैं तो बोलता हूं वायदे में भी फायदा। आप करके तो देखो, वो पूरा करवा देगा वायदा। बच्चा करके देखे, भगवान करवा देता है। तो तब मेरे को पता नहीं था एक्चुअली में कि ये जो संकल्प दे रहा है वो भगवान दे रहा है। अब तो मुझे पता है क्लियर कि वो जो संकल्प आ रहे थे वो सोर्स है, सुप्रीम सोर्स। देखो भगवान आपसे मुख से बात नहीं करेगा, भगवान क्या है? सुप्रीम सोल। उसके पास मन बुद्धि संस्कार, सुप्रीम मन सुप्रीम बुद्धि सुप्रीम संस्कार, वेरी पावरफुल। आप आत्मा सोल, मन बुद्धि संस्कार। तो परमात्मा जब आपसे बात करता है मन ही मन, टक टक टक, उसका मन पावरफुल है। आपका मन शांत होना चाहिए टू रिसीव दैट पावर। अगर मेरा मन अशांत है नहीं रिसीव करेगा। मेरा मन अगर ऑक्यूपाइड है, मतलब मेरा मोबाइल बिजी है, तो बोलेगा आउट ऑफ रीच, आउट ऑफ कवरेज एरिया, कुछ भी है ना, समझ रहे। तो अपने मन को खाली रखना, शांत रखना, खुश रखना। क्योंकि आप देखो माँ बाप भी किस बच्चे को उठाएंगे, अगर 4 बच्चे हैं सब पै 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 चिल्ला रहे हैं, तो जो एक प्यारा बैठ के मुस्कुरा रहा है किसको उठाएंगे? उसको उठाएंगे ना, उसको गोद में, ये तो मेरा सबसे प्यारा बच्चा है, ठीक है। भले ही देखने के लिए वो उनको अटेंड करेंगे, लेकिन असली में दिल किसकी तरफ जाएगा? वो मेरा राजा बेटा, देखो मुस्कुराता रहता है, तंग नहीं करता है, ठीक है। तो वैसे अगर हम बन जाए, अपने मन बुद्धि को शांत रख के, आप देखो किसी भी परेशानी का हल मिल जाएगा, ठीक है। आपको एक मैं प्रैक्टिकल अपना अनुभव बताता हूं। 2012-13 की बात है, मैं तब शायद आसाम में पोस्टेड था पहली बार, सॉरी 11 की बात है। मैं ऑल्दो इस संस्था से 99 से जुड़ा हूं, फर्स्ट टाइम मैं 2011 में आया। तो उस मामले में मैं समझता हूं कि मैंने बहुत कुछ खो दिया था उस दौरान, बट ये ड्रामा है, बहुत वंडरफुल है। तो मैं नहीं समझता कि आज कि नहीं कुछ खोया है, लेकिन मैं आया यहां 2011 में फर्स्ट टाइम। ये मैं सिक्योरिटी सर्विसेज विंग का जिस प्रोग्राम में आप आए हैं उसमें पहली बार आया था। तो यहां आने के लिए मुझे छुट्टी अप्लाई करनी थी, और फौज में छुट्टी, हाँ आप सब समझते ना, फोर्सेस में छुट्टी मिल जाती है आसानी से। अरे अभी भी आप बोलेंगे नहीं, आज से तो अभी तो आपको बोलना चाहिए छुट्टी तो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ठीक है ना, क्योंकि छुट्टी आपकी है, ठीक है ना। एंड आपसे अच्छा प्लानर कोई नहीं है, बिकॉज इट इज योर लीव, यू कैन नॉट प्लान फॉर माई लीव। आप मेरी छुट्टी नहीं प्लान कर सकते, आप अपनी छुट्टी बेहतरीन तरीके से प्लान करते हैं, ठीक है ना। तो मेरे को छुट्टी जाना था और फर्स्ट टाइम यहां आना था बाबा से मिलने, और मैंने अपने बताया अधिकारी को, उन्होंने किसी कारणवश मना कर दिया, और मतलब इतना लिमिट तक पहुंच गया फाइनली। मतलब मैंने अप्लाई किया था काफी समय पहले छुट्टी, उस समय ओके कर दिया, लेकिन बाद में रोक दिया गया। तो फिर लास्ट डे सैटरडे हो गया, तो मैं फिर क्या करूं, मैंने बाबा को बोला बाबा आप मेरी मदद करो, आप चलो मेरे साथ। और मैं बस आप समझो कि भगवान को दिल में याद रख के मैं सीओ के ऑफिस में गया और मैंने बोला सर मुझे जाना है। सर दुनिया में लोग झूठे टेलीग्राम मंगवाते हैं, तार मंगवाते हैं घर से, होता है ना, हाँ कि फादर सीरियस मदर सीरियस। मैंने बोला मेरा फादर सर वो तो क्या होगा उसको, बच्चा सीरियस है सर, मेरे को अपने फादर से मिलना है और मैं पहली बार जा रहा हूँ, आई वॉन्ट टू गो। और पता नहीं क्या हुआ, मैंने तो 15 दिन की छुट्टी अप्लाई की थी, मैंने बोला लास्ट बोला सर मेरे को 7 दिन दे दो, मैं बस मिल के आ जाऊंगा। उनके मुंह से निकले एक दिन एक महीना छुट्टी जा, थैंक यू बाहर आ गया। और उसके बाद मैं एक महीना अपने परिवार के साथ यहाँ रहा, और यहाँ पर भी बड़ी एक वंडरफुल चीज हुई। मैं नीचे शांतिवन में रहता था और वहां पे उस समय ब्रह्मा बाबा जो साकार माध्यम, उनकी बेटी उस समय यहाँ पे थी, दादी निर्मल शांता दादी। तो आपको एक चीज अपनी बताऊंगा, मेरे को मीठा बहुत पसंद है, खाने के बाद बहुत पसंद है, मतलब खाने के बाद कुछ होना चाहिए, गुड़ हो, ठीक है ना, कुछ होना चाहिए। तो मैं शांतिवन में गया, वहां पे तो बहुत 25,000 लोग आए हुए थे उस साल, हर साल आते हैं, अब तो 27, 28, 30 हजार लोग आते हैं। तो मैं गया वहां पे, बहुत भीड़ थी, बहुत साधारण, क्योंकि हम लोग सब यहाँ मेडिटेशन के लिए आते हैं, ये नहीं कि वहां मतलब बढ़िया पकवान, एकदम सिंपल भोजन और हम खाते थे। मेरे को इच्छा थी कि बस खाने के बाद जरूर कुछ मीठा मिले। अब मैं वहां इतने लोग, 25,000, मीठा रोज तो नहीं मिलता है, तो मतलब नहीं मिला, एक दिन हो गया, दो दिन, मन में बड़े संकल्प चलते थे कि खाने के बाद मीठा नहीं खाया कुछ, और आदत नहीं हमारी बाहर खाने की, हम बाहर खाते नहीं है, तो मन में संकल्प था। मेरे को अचानक एक दिन दीदी का फोन आया, दूसरे या तीसरे दिन, विकास भाई हम निर्मल शांता दादी से मिलने जा रहे हैं, आप मिलेंगे? मैं अरे क्यों नहीं, ब्रह्मा बाबा की साकार मीडियम की बेटी, मैं चलूंगा। मैं गया, शाम का समय था, हम सब लोग लाइन लगा के मिल रहे थे और दादी बैठी थी, मेरे को तो मैंने देखा उनको, एंड वो एक्चुअली में ब्रह्मा बाबा की बड़ी ट्रू इमेज थी, उनकी एकदम झलक मिलती थी ब्रह्मा बाबा की, उनकी पता चल जाएगा आपको कि उनकी बेटी है। तो मैं गया और मैंने बोला दादी ओम शांति, बोलती हंसता है अपने, मेरे हाथ से खा, वो सबको हाथ में दे रही थी, मेरे को अपने हाथ से उनने लड्डू खिलाया, बोलती हंसता है जा हाथ से खिला। और यकीन मानिए उस दिन के बाद जितने दिन मैं वहां शांतिवन में था, रोज मुझे टोली कहीं ना कहीं से मिलती थी, रोज मीठा खाता था, और वहां मैं उसके बाद जब तक रहा, जितने दिन रहा, रोज मीठा मीठा मीठा, और ये खाते खाते हम भी मीठे ही बन गए, कब कड़वाहट निकल गई पता ही नहीं चला। आपको मैं बताऊंगा, हम फोर्सेस वालों की जो लाइफ में अक्सर प्रॉब्लम पड़ती है, आप देखोगे नॉर्मल काम में नहीं पड़ती है, हम सब वेल ट्रेन्ड हैं, है ना, कोई ट्रेनिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, काम में कोई टास्क दे दे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जहां पर्सनल लेवल पे बात आती है थोड़ी सी प्रॉब्लम। जैसे मेरे को छुट्टी जाना है, भाई मेरे को समय पे छुट्टी तो दे दो, है ना, यही मेरी एक वो रहता है। पोस्टिंग, हाँ पोस्टिंग, अब परिवार कहाँ रहेगा, बच्चे कहाँ, उनका पढ़ाई का कैसा होगा, कहाँ जाएंगे दूसरी जगह, ये दो चार इश्यूज ही हमें ज्यादा प्रॉब्लम देते हैं, ठीक है। बाकी काम में तो चलो, घर में भी काम चलते रहते हैं तो ऊपर नीचे होता है, लेकिन जो मेजर इश्यूज हैं वो हमारे यही आते हैं, पोस्टिंग और ये हमारी छुट्टी के, ठीक है। तो छुट्टी के बारे में तो आपको ये कहना चाहूंगा कि आप जैसे जिस भी सेक्शन में हैं या जिस भी ग्रुप में हैं उसके आप अगर अधिकारी हैं, क्योंकि यहाँ सभी सीनियर ऑफिसर्स अपना, हमारे सबॉर्डिनेट ऑफिसर्स आए हैं, ठीक है, आप सभी का अपना एक वो तजुर्बा है, तो आप जानते हैं कितने मेरी स्ट्रेंथ में काम चल जाएगा, और आप उसी हिसाब से प्लान करके करिए। और मेरा ये मानना है कि जब भी कोई इंसान मेरे से छुट्टी मांगने आता है, मैं उसको कुछ एक्स्ट्रा ही दूं, तो वो पॉजिटिव होके जाएगा आपके ऑफिस से। छुट्टी के मामले में कभी भी किसी को, बोलते ना, दुखती रख पे नहीं करना चाहिए, देना चाहिए, क्योंकि सेम मेरी छुट्टी, जैसे मेरे को छुट्टी चाहिए तो मेरे को अगर कोई रोकता है तो मेरे को भी खराब लगता है, ठीक है। तो उसी हिसाब से आप भी अगर ट्रीट करेंगे तो वो सबसे अच्छा है। मैं अपनी छुट्टी के लिए कभी भी रिस्क मतलब वैसा नहीं करता कि रिक्वेस्ट या प्लीड, ऐसा नहीं कि सर मेरा नो रीजन फॉर लीव, दिस इज माय लीव एंड आई वांट टू गो. मैं अपने किसी जवान से मांगता नहीं हूं. मैं अभी एनसीसी बटालियन में हूं. मैंने आज तक कभी किसी को ये तक नहीं बोला कि प्लीज स्विच ऑफ योर मोबाइल व्हेन यू एंटर माय ऑफिस. मेरे सामने मेरे सारे सबॉर्डिनेट उनका फोन बजता है, प्लीज अटेंड करो, जरूरी हो सकता है जाओ. क्योंकि मेरा फोन बजता है तब मैं उसकी अहमियत समझता हूं, तो मेरे भाई का फोन बज रहा है उसकी भी अहमियत है. ठीक. तो मैंने कभी भी ये अपने ऑफिस में ये रूल नहीं रखा. तो सिमिलरली जैसे मेरी छुट्टी अहमियत रखती है, मेरे भाई की छुट्टी भी अहमियत रखती है. तो आप अगर इस मनोस्थिति से जाएंगे तो शायद आपकी भी कोई छुट्टी कभी रोक नहीं सकता, सवाल ही नहीं उठता. भगवान के बच्चे की छुट्टी और रुक जाए, ऐसा हो नहीं सकता. लेकिन हाँ, अगर मैं कुछ अपना देहभान या कुछ प्रॉब्लम लेके जाऊं ऐसा, या कुछ बनावटी चीज, तो हाँ ये हो सकता है कि मैंने बनावटी कोई तार मंगा लिया, कोई ऐसी इमरजेंसी दिखाई. जैसे आजकल बहुत लोग फ्लड का मांग रहे थे छुट्टी, फ्लड की वजह से छुट्टी, मेरे उधर पानी भर गया है. ठीक है. अब उसमें क्या होता है, कोई जो सच्चा भाई है जिसके घर में सचमुच फ्लड आ गया, उस पर हम शक करते हैं. मेरे यूनिट में अभी हुआ था कि हम मतलब मेरे जो अहदेदार साहब थे वो बोले कि साहब वो झूठ बोल के जा रहा है, या साहब वो ऐसा पानी वानी नहीं चढ़ा है, मेरे को मालूम है. लेकिन देखो हमें विश्वास करना है, हमारे फोर्सेस हैं, हम इनके हाथ में अपने वेपन्स या एम्युनिशन दे के विश्वास करते हैं, तो एक छुट्टी पे हम विश्वास नहीं कर सकते. ठीक है. तो ये विश्वास आई थिंक हमें होना चाहिए. मेडिटेशन का जो एक तरीका हमें बहुत अच्छा सिखाया गया है, जो परमात्मा कई बार अपने जो हमारे को क्लासेस कराते हैं उसमें सिखाते हैं, कि चेक एंड चेंज. ये आपने सुना होगा, यहां पे सुना आपने चेक एंड चेंज. हाँ, तो ये आप मतलब जिसने नहीं सुना है वो जस्ट अपने मन में नोट कर लीजिए, चेक एंड चेंज. अब किसको चेक करना है और किसे चेंज करना है बताएंगे? नहीं, अपने आप को मतलब किसको, शर्ट चेंज करनी है, विचारों को. हाँ, मतलब ये मेरे को क्लियर होना चाहिए, अपने आप की हम जब बात कर रहे हैं तो दैट मीन्स हम आत्मा, मुझे अपने विचारों को चेंज करना, अपने मन को सकारात्मक दिशा देनी है. ठीक है. तो चेक एंड चेंज जो है वो है कि मैं अपने विचारों को कॉन्स्टेंटली चेक करता रहूं और उनको सही दिशा देता रहूं. ठीक है. अब सही दिशा कैसे देंगे? मैं देना तो चाहता हूं लेकिन ये ऐसा क्यों करते हर बार? हाँ, ये तो ऐसे ही बोलते हैं, होता है ना. हाँ, बच्चे को एग्जाम के टाइम में बोलो तो वो मोबाइल में लगा रहेगा, ये तो सुन ही नहीं रहा है. हाँ, वो नहीं सुनेगा. लेकिन मैं अपने विचारों को कैसे पॉजिटिव बनाऊंगा? तो उसके लिए बताते हैं कनेक्ट एंड करेक्ट. चेक एंड चेंज ठीक है, अगर आप कर पाए, आप में शक्ति है, वेरी गुड, भगवान के बच्चे हम सब में शक्ति है, तो चेक एंड चेंज. लेकिन अगर नहीं कर पा रहा मैं, तो कनेक्ट एंड करेक्ट. तो भगवान से कनेक्ट कीजिए ना, वो सर्वशक्तिवान है, आपको एकदम से शक्ति से भरपूर कर देगा और अपने उस विचार को जो नकारात्मक चिंतन चल रहा है उसको करेक्ट कर देगा, वो शक्ति देगा. और धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ हम परफेक्शन की तरफ बढ़ते जाएंगे, अग्रसर हो जाएंगे. तो ये आप एक विधि कोशिश करिएगा कि जब भी कोई प्रॉब्लम आए और आपको लगता है मुझे हल नहीं मिल रहा, तो प्रॉब्लम मीन्स परमात्मा, बस थक से वो याद आना चाहिए, मतलब प्रॉब्लम मीन्स परमात्मा. ठीक है ना. मैं तो कभी कभी बाबा को बोलता हूं, जैसे हम आपने सुना होगा परमात्मा को हम बोलते हैं तीन रूप से मिलता है हमें. कौन कौन से तीन रूप है ना? परमात्मा हमें तीन रूप से इस समय में मिलता है, बाप, टीचर और सतगुरु. ठीक है, मतलब वो हमारा पिता है, परम पिता, सर्वशक्तिवान पिता है, तो पिता के रूप से हमें वर्षा देता है, मतलब अपनी प्रॉपर्टी देता है. टीचर के रूप से हमें पढ़ाई पढ़ा रहा है, ये ज्ञान योग. ठीक है. और सदगुरु के रूप से हमारी सदगति करता है, गति सदगति. ठीक है, मुक्ति और जीवन मुक्ति प्राप्त होती है. वो ये सारी थोड़ी सी टेक्निकल डिटेल्स में मैं नहीं जाऊंगा. ठीक है. तो परमात्मा बाप टीचर सदगुरु है, उससे और बहुत सारे हमारे संबंध हैं. एक दोस्त का बोलते हैं खुदा दोस्त, मेरी मदद के लिए आ जा. ठीक है ना. तो वैसे ही मैंने एक और अच्छा संबंध बनाया है, मैं उन्हें बोलता हूं, जैसे घर में हम लौकिक पिता को क्या बोलते हैं, लौकिक पिता को क्या बोलते हैं, पापा. हाँ, पापा मेरे को बहुत अच्छा शब्द लगता है, पापा. पापा मींस पर्सनल असिस्टेंट एंड डबल पर्सनल असिस्टेंट. ठीक है. तो भगवान हमारी मदद करने के लिए तत्पर बैठा है. बच्चा याद तो करे, क्योंकि जब हम याद करते हैं हमारा मन बुद्धि जुड़ता है और एकदम से पावर, वो संकल्प आना शुरू होते हैं. और शक्ति जो है, आपने सुना ही होगा सूरज भाई को उस दिन ऊपर हॉल में, संकल्प ही शक्ति है. मतलब हमारी जितनी भी शक्ति है हमारे मन में उनका वास है, और मन में रहता क्या है, संकल्प. ठीक. तो जितना हम अपने संकल्पों में परमात्मा को लाते रहें, जितना हम उसको याद करते रहें, उतना हमारा ये जर्नी है पावरफुल हो जाएगा. ठीक है. तो अब मैं क्योंकि टाइम की तरफ हम करीब पहुंच रहे हैं, तो मुझे लगता है कि समापन करने के लिए मैं एक गीत के माध्यम से, ठीक है ना, एक बहुत ही पावरफुल गीत है परमात्मा का, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे भाई जी से कि वो गीत बजाएं और हम परमात्मा से कनेक्ट हों, जिससे कि हम अपने मन और बुद्धि को दोनों को एकाग्र कर लें, ठीक है ना। योग मीन्स मन और बुद्धि को एक साथ। देखिए स्थूल रूप में हम लोग करते आए हैं, स्थूल रूप में हम लोग क्या करते हैं, कौन सी ध्यान मुद्रा में बैठते ना, ध्यान मुद्रा कोई बताएं कैसे क्या होती है, ध्यान मुद्रा कैसे होती है, है ना। ये स्थूल हो गया, हमें क्या करना है, स्थूल नहीं, जरूरत नहीं है, मन और बुद्धि को जोड़ना है, ये ध्यान मुद्रा, मतलब मन और बुद्धि मेरा एकाग्रचित हो जाए परमात्मा पिता पर, यही है ध्यान मुद्रा, और कुछ नहीं है। हम जो भी चीज स्थूल में कर रहे हैं एक्चुअली में उसे सूक्ष्म में करना है। अब वो जैसे आप देखो, एक भाई मेरे को सुबह मिले, मैं पानी पी रहा था खड़े होके, बोलते भाई जी बैठ जाओ, क्या होगा बताएंगे, क्या होगा, खड़े होके पानी पियेंगे तो क्या होगा, हाँ, अरे ये तो मैंने बायो का स्टूडेंट मैंने नहीं पढ़ा, घुटनों में पानी चला जाए, ये कौन सा लाइफ पाइपलाइन सिस्टम नया फिट हो गया है, सॉरी, घुटनों में दुख कब होता है जानते हैं, दुख जब हम जीवन में घुटते हैं, मेरा घुटन का जीवन है, तो घुटना तो दुखेगा और क्या दुखेगा, कोई घुटना बोल रहा है घुटना, लेकिन मैं घुट रहा हूं, घुटना बोलता है ना, घुटना घुटना, मैं हूं ना, लेके चल रहा हूं मंजिल पर, पहुंचा दूंगा, ठीक है। तो आप देखिए एक्चुअली में किसी ने नहीं कहा, आप किसी बच्चे को ले बेटा बैठ के पी, छोटा बच्चा बैठ के पिएगा, वो तो लेट के खाता है पीता है, कुछ नहीं होता उसे, सारे जानवर दुनिया के खड़े होके पानी पीते हैं, बैठ के पीते, घोड़े को देखा पूरी जिंदगी खड़ा रहता है, तो बेचारे का घुटना क्या होगा, और सबसे अच्छा दौड़ता वही है। तो ये सारी चीजें देखिए लोग स्थूल में समझा रहे हैं, हमें सूक्ष्म में समझना है कि जब पानी पीना है तो मन बुद्धि को स्थित करके, हे परमात्मा मुझे इतना साफ स्वच्छ पानी दिया है, दुनिया में कई करोड़ लोग हैं जिनको एक साफ पानी की बूंद उपलब्ध नहीं है, और मुझे एक गिलास भर के, एक बाल्टी भर के नहाने को, तो उसकी दुआ, उसको थैंक्स करके, प्रकृति के पांच तत्वों को थैंक्स करके हम अपना कार्य करें, आई थिंक वो प्रैक्टिकल चलेगा, प्रैक्टिकल मेडिटेशन, ठीक है। अब हम भगवान के, हम बस अब ये ताली भी, ये देखिए स्थूल हो गया ना, स्थूल नहीं, सूक्ष्म में चले, दिल से थैंक्स करें उसे। अब एक गीत मैं भाई जी को रिक्वेस्ट करूंगा, वो जो बहुत उमंग वाला गीत है, तुम जैसा,
और कोई नहीं तुम जैसा, और कोई नहीं भाग्यवान, चमक रहा भाग्य सितारा, चमक रहा है भाग्य सितारा, नील गगन आसमान, तुम जैसा और कोई